ओम शांति। बाप दादा ने अपनी अनेक मधुर मुरलियों में हम सभी को संकल्पों का महत्व बताया है और बार बार यही प्रेरणा हमें बाबा देते हैं कि जैसे जैसे समय की समीपता आती जा रही है वैसे वैसे हमें अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, परंतु ये तीव्रता लाने के लिए संकल्पों में दृढ़ता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर संकल्पों में दृढ़ता है तो सफलता सहज प्राप्त होती है। संकल्पों में दृढ़ता आने से हर कमजोरियों पर हम सहज विजयी बन सकते हैं। इतना हम सभी बच्चे समझते हैं कि दृढ़ता बहुत आवश्यक है। जैसे ही ब्राह्मण जन्म प्राप्त होता है तो हमारे अंदर एक दृढ़ता स्वाभाविक रीति से आ जाती है कि बाबा जब हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं नियमों को स्पष्ट करता है तो बहुत सहज रीति से हम अपने जीवन में उसको अपना लेते हैं और इन मर्यादाओं के ऊपर इतना एक्यूरेट चलने लगते हैं कि कोई हमें हिला नहीं सकता है। इसका मतलब हमारे अंदर दृढ़ता है, तभी तो सारी मर्यादाओं को फॉलो करने में हम पक्के हैं और पक्के बाबा के बच्चे बन करके हम अपने ब्राह्मण जीवन में भी यहां तक पहुंचे हैं। तो ये नहीं कि हमारे अंदर दृढ़ता की कमी है, दृढ़ता स्वाभाविक रीति से है। लेकिन फिर देखा जाता कि जब पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, कई बार हम संकल्प करते हैं, संकल्प के महत्व को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद वो संकल्प हमारे ढीले हो जाते हैं और चाहना होते हुए भी जब संकल्पों में वो दृढ़ता नहीं रहती है तो धीरे धीरे पुरुषार्थ में भी अलबेलापन आने लगता है और तब सोचते भी है कैसा क्यों होता है। जब ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को अपनाने में हम कहीं भी ढीले नहीं हुए तो फिर पुरुषार्थ के मार्ग में उन्नति के लिए जो भी संकल्प करते हैं उसमें ढीले क्यों हो जाते हैं। स्थूलता में दृढ़ता को अपना लेने में हमें भक्ति मार्ग की भी आदत पड़ी हुई होती है, इसलिए उसको ले आना सहज होता है। भक्ति में भी हमने अनेक नियम व्रत आदि रखे और इसलिए ज्ञान मार्ग में आए तो स्थूल रूप में धारणाओं में मर्यादाओं को अपनाना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। लेकिन जब पुरुषार्थ की बातें आती है वहां सूक्ष्म स्तर पर हम दृढ़ता को अपनाना चाहते हैं और सूक्ष्म स्तर माना संकल्पों का स्तर, तो कई बार मधुवन आते हैं या विशेष दिन होते हैं तो उन विशेष दिन पर हम अपनी सूक्ष्म कमी कमजोरियों को पहचानते हुए उसको दूर करने का एक संकल्प लेते हैं और इतना पक्का बाबा के सामने जैसे वादा करते हैं कि बाबा आज के बाद ये मेरा संकल्प बहुत पावरफुल रहेगा और ये दृढ़ संकल्प मैं आपके कमरे में करके जाती हूं और मैं उसके ऊपर दृढ़ रहूंगी। लेकिन कुछ समय के बाद ही वो संकल्प में लूज हो जाते हैं, वो कमी कमजोरी वापस अपना स्थान लेने लगती है और उस समय हमें लगता है कि माया बड़ी प्रबल है। कितना संकल्प कर लेने के बाद भी माया आ जाती है। माया माना ही अपनी ही कमजोरी का दूसरा नाम, तो माना वो कमजोरी वापस आ गई। उसका कारण क्या है? संकल्प में दृढ़ न होने के लिए कई बातें जिम्मेवार है। सबसे पहली बात तो ये जिम्मेवार रहती है कि अगर हमने कोई संकल्प किया है तो उसमें दृढ़ता यानी शक्ति लाने के लिए हमें अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना होगा। लेकिन देखा जाता है कि अधिक बार हमारे संकल्प जो है उसमें नेगेटिव और व्यर्थ चलने लगता है और ये नेगेटिव और व्यर्थ ये संकल्पों की शक्ति को कम कर लेता है। इसलिए वो संकल्प में जो पावर रहनी चाहिए वो पावर नहीं रहती है। तब फिर चलते चलते वो संकल्प हमारा ढीला होने लगता है। तो इसलिए जैसे भक्ति में नियम व्रत को अपनाते हैं, इसी प्रकार हमें भी कुछ व्रत अपने संकल्पों के लिए भी अपनाने की आवश्यकता है, ताकि व्यर्थ और नेगेटिव का जो लीकेज है वो बंद हो जाए। जब तक ये लीकेज को बंद नहीं किया तब तक वो ड्रेन होती रहती है मानसिक शक्ति हमारी, और इसीलिए वो संकल्प में पावर नहीं आती है। दूसरा कारण है कि संकल्पों में दृढ़ता क्यों नहीं आती है, तो जो संकल्प हम करते हैं बाबा के सामने उस संकल्प को पहले समझो कि ये संकल्प जो मैंने किया है उसका उद्देश्य क्या है, पुरुषार्थ में भी क्या उद्देश्य है जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने ये संकल्प किया। अगर उद्देश्य स्पष्ट है कि उससे मुझे जीवन के अंदर इस तरह पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, अगर ये क्लैरिटी है तो वो क्लैरिटी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन हम अनजानेपन में ही आकर संकल्प कर लेते हैं, उसके महत्व को समझते नहीं है, उसके उद्देश्य को समझते नहीं कि ये संकल्प लेने के पीछे मेरे पुरुषार्थ में क्या उद्देश्य है, तो उसको समझना पड़ता है। अगर ये विजन क्लियर है मेरे सामने तो फिर उस बात को फॉलो करने में सहजता होगी। दूसरी बात कि ये संकल्प लेने से मुझे प्राप्ति क्या होने वाली है, ये भी क्लियर होना चाहिए कि सूक्ष्म में आत्मा को किस प्रकार हम प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। जो बाबा कई बार कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे जब भी कोई संकल्प लेते हैं तो उससे जमा का खाता हमारा बनता है, तो किस किस रूप में हमें प्राप्ति होगी, क्योंकि अगर प्राप्ति क्लियर है तो करना आसान है, अगर प्राप्ति क्लियर नहीं है तो भी करना मुश्किल होता है। जैसे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में भी अगर प्राप्ति का पता नहीं है तो उन आत्माओं से नियम मर्यादा को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन प्राप्ति का पता है, कौन कह रहा है ये पता है, उद्देश्य पता है कि उससे हम किस तरह आत्म उन्नति करेंगे, तो उससे वो फॉलो करना सहज हो जाता है। इसलिए जो संकल्प हम कर रहे हैं उस संकल्प को यथार्थ समझो, उसकी इतनी क्लैरिटी हो, इतना विजन क्लियर हो जिससे करना आसान हो जाए। अगर ये बातें क्लियर नहीं है तो क्या होगा, या तो हमारे स्वभाव में उस संकल्प को लेकर के जिद डेवलप हो जाएंगी, और तब कई बार कई लोग कहते भी हैं ये बहुत जिद्दी है, और वो जिद्द में आकर के कई बार कई लोगों को हम दुख भी देते हैं। अगर दृढ़ संकल्प है तो उसमें किसी को दुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगर दृढ़ संकल्प है, उद्देश्य क्लियर है और यथार्थ विधि से हम आगे बढ़ रहे हैं तो अनेकों का सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर हम ही अपने में क्लियर नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया या किसी ने किया उसको देखते हुए हम भी फॉलो कर लेते हैं, इस रीति से अगर उस संकल्प को अपनाया गया तो वो ऐसी जिद हो जाएगी कि उस जिद को पूरा करने के लिए, वो दृढ़ संकल्प नहीं है, वो जिद को पूरा करने में न हमें किसी का सहयोग मिलता और हम ऑन द कॉन्ट्ररी खुद को भी दुख देते हैं, क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं है तो युक्ति युक्त हम चल नहीं सकते हैं। अगर दृढ़ संकल्प है और क्लियर है तो युक्ति युक्त चलना आ जाएगा, और तब वो संकल्प में सफलता या उस संकल्प को पूरा करने से विजय का अनुभव हम करेंगे। तो इसलिए वो संकल्प को समझना अति आवश्यक है, नहीं तो जैसे भक्ति में ब्लाइंड फेथ की रीति से हम करते रहे, इसी तरह ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी उस बात को समझते नहीं हैं और कर लेते हैं तो एक प्रकार की ब्लाइंड फेथ के रूप से हम चलने लगते हैं। और ब्लाइंड के सामने रास्ता कहाँ होता है, अंधविश्वास के रूप में उस संकल्प को पूरा करने के लिए लग जाते हैं तो उसमें रास्ता नहीं हो दिखाई देता है, युक्ति युक्त होकर चल नहीं पाते हैं, सहयोग नहीं मिलता है, तो थोड़े समय के बाद थक जाते हैं। कब तक युद्ध करते रहेंगे, और इसलिए युद्ध करते करते थक जाते हैं या हार खा लेते हैं, तब वो संकल्प ढीला होने लगता है। इसलिए जो संकल्प हम ले रहे हैं अपने अंदर पुरुषार्थ के लिए भी, उसको भी यथार्थ रीति समझो, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान माना ही हर बात की यथार्थ समझ हमें देता है। और जब उस बात को हम जीवन में लेते हैं तो मुश्किलें आएगी, विघ्न आएंगे टेस्ट के रूप में, लेकिन वो विघ्न आते हुए भी वो हमें हिलाएंगे नहीं, हमारे अंदर उत्साह आ जाएगा और उसको एक चैलेंज के रीति से स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो थकेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, लेकिन नित नए नवीनता के साथ हम आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब हम संकल्पों में दृढ़ता लेते हैं तो विघ्न तो जरूर आएंगे उसकी टेस्ट लेने के लिए कि कितना आपने उस विचार को समझा है, उस संकल्प को समझा है और उसको जीवन में धारण किया है। विघ्न आएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के सामने क्लैरिटी है, तो क्लैरिटी आने से क्या होगा, हमें नई अपॉर्चुनिटीज उसमें खुलती हुई नजर आएंगी। और वो अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, वो नए आयाम जो हमारे सामने खुल रहे हैं, उन आयामों को देखते हुए अंदर में एक अलग प्रकार की खुशी का अनुभव होगा। और उसमें इतनी नवीनता की विधि को अपनाते हुए उन विघ्नों को भी हम पार करेंगे, वो विघ्नों के ऊपर भी विजयी होने का अनुभव करेंगे। तब कहते हैं कि दृढ़ता की शक्ति ऐसी है जो विजय का अनुभव कराती है, सफलता का अनुभव कराती है। किस पर? विघ्नों के ऊपर। जो विघ्न आते हैं, तो ऐसे नहीं कि दृढ़ संकल्प कर लेने से विघ्न नहीं आएंगे। विघ्न तो आएंगे, पहले टेस्ट पेपर्स के रूप में आएंगे, क्योंकि वो विघ्न भी हमें समझाना चाहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर बात में कुछ सीखो, कि ये विघ्न भी आया तो मुझे क्या सिखाने के लिए आया, क्या समझाने के लिए आया। उस रूप से अगर उसको देखेंगे तो नए आयाम खुलते हुए नजर आएंगे। और इस रीति से पुरुषार्थ में भी नवीनता को अपनाते हुए, रचनात्मकता को अपनाते हुए, हम जीवन के अंदर हर कदम में उस दृढ़ संकल्प के आधार पर विजयी होने का अनुभव करेंगे। ये है दृढ़ता की शक्ति। लेकिन दृढ़ संकल्प फिर क्यों वीक हो जाता है? तीसरा कारण ये है, पहला कारण तो बताया व्यर्थ और नेगेटिव का लीकेज है, दूसरा कारण बताया कि उसको हमने यथार्थ रूप में समझा नहीं है, तीसरा कारण ये है कि दूसरों को देखने की आदत, कि भाई हमसे ये पुराने हैं, अभी उनके अंदर ही ये कमी कमजोरी है, मैंने तो दृढ़ संकल्प लिया अपनी ये कमजोरी के ऊपर विजय पाने के लिए, लेकिन ये मेरे से पुराने, उनके अंदर तो अभी तक ये कमजोरी है। ये देखते हुए हम अपने आप को एक दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कभी मेरा संकल्प टूटा या मेरे से अगर छोटी मोटी गलती हो गई तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार के तकिए, जो बाबा कहते हैं ना, दनलप के तकिए लगाना आरंभ कर देते हैं कि इसमें भी ये कमी है, उसमें भी ये कमी है, ये तो मेरे से पुराने हैं, फिर भी उसके अंदर ये कमी है, हम तो फिर भी नए नए हैं, इसलिए अगर हमारे के अंदर ये थोड़ी बहुत होगी तो कोई हर्जा नहीं। इस तरह अपने आप को कंफर्ट देना शुरू करते हैं। और जब ऐसे अपने को कंफर्ट देते हैं तो आज थोड़ी मात्रा में वो संकल्प टूटा, कल और मात्रा में टूटेगा, फिर और मात्रा में टूटेगा, और फिर से वो कमजोरी डबल स्वरूप से हमारे अंदर वापस आ जाती है, और उसके ऊपर हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दूसरों को देखने की जो आदत है, वो भी हमारे संकल्पों में दृढ़ता की शक्ति को कम कर देती है, हमें भीतर से कमजोर कर देती है। लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं, जब दिखाई देता है तो क्या करें? जब दिखाई देता है कि ये हमसे अगर पुराने हैं, उसमें ये कमी कमजोरी है, तो उस वक्त ये सोचो कि फिर भी वो ज्ञान में चल रहे हैं, इतना हिम्मत करके कितना युद्ध करना पड़ता होगा। अगर हमें ये कमजोरी तकलीफ दे रही है तो जरूर उसको भी तो दे रही होगी, लेकिन अगर पुराने होते हुए भी उसने विजयी नहीं पाया है तो माना कितना उसको तकलीफ दे रही होगी। और हो सकता है कि उसका यह संस्कार और कड़े रूप में होगा, उसने भी मेहनत तो अवश्य की होगी उसको दूर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हिम्मत रख के चल रहे हैं ना, तो उसके हिम्मत को तो दाद देनी चाहिए ना, उसके हिम्मत को तो हमें मानना चाहिए कि फिर भी वो चल रहे हैं। तो कौन सी शक्ति से चल रहे हैं? जरूर उसके और उसके बावजूद भी उसके पास और कोई दृढ़ संकल्प की शक्ति होगी, और कोई ऐसी विशेष बात होगी जिसके आधार पर वो इतना चल रहे हैं। तो उस रूप से हम अपने नजर को बदल दें, अपने दृष्टिकोण को बदल लें। और जब हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा तो उस आत्मा के प्रति हमें रहम उत्पन्न होगा, और उसके प्रति भी हमारे मन से शुभ भावना, शुभ कामना ही निकलेगी कि इस आत्मा को भी बाबा वो शक्ति दे कि वो अपनी ये कमजोरी के ऊपर बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर ले। और इस तरह से उसके प्रति अंदर से दुआएं निकलेगी, और हो सकता है कि हमारी वो दुआ की शक्ति से उसके अंदर हिम्मत आ जाए, शक्ति आ जाए उस कमजोरी पर विजय प्राप्त करने की। तो हमारे दृढ़ता की शक्ति दूसरों को भी अगर पंख दे सकती है और उसको भी जीवन में आगे बढ़ने की, उसको पार करने की हिम्मत दे सकती है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो वो दृढ़ता की शक्ति से सिर्फ हम अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर रहे ऐसे नहीं, लेकिन उसको भी हिम्मत प्रदान कर रहे हैं कि वो भी आगे बढ़ जाए, वो भी इस कमजोरी को सहज रीति से जीत करके पार हो जाए। बाबा अभी हम बच्चों का ये स्वरूप देखना चाहता है, जो बाबा ने लास्ट पहली मुरली इस सीजन की जो चलाई उसमें भी बाबा ने यही कहा कि दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं देना किसको? ऐसी जो कमजोर आत्माएं हैं, जिसके पुरुषार्थ में ऐसी कई कमजोरियां हैं जो उनके लिए रुकावट बन रही है, और इतने साल पुरुषार्थ करने के बाद भी वो नहीं कर पा रही है, हो सकते हैं कि हमारी दुआ की शक्ति उसको लग जाए। तो इसलिए अंदर से उस आत्मा को देखते हुए, उसकी कमजोरी को देखते हुए खुद कमजोर न हो जाए, लेकिन हम ही उसको वो शुभ भावना की शक्ति दे जिससे वो भी जीवन के अंदर आगे बढ़ने के पुरुषार्थ में आगे बढ़े। तो इसलिए कहा कि वो आत्मा को देखकर हमें कमजोर नहीं होना है, लेकिन हमारे दुआ की शक्ति से उसको भी हम मदद रूप हो जाए। तो वो हिसाब किताब को भी जल्दी सेटल करेगा और उसको मदद भी मिल जाएगी। और ये ऊंची भावना अगर हम ब्राह्मणों में आ जाए तो हम एक दूसरे के ऐसे सहयोगी बन करके आगे बढ़ने लगे, उड़ने लगे, तो ये हमारा स्वरूप बाबा देखना चाहता है। उसके लिए कहा दुआएं दो और दुआएं लो। और जो बाबा ने विधि बताई संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए, वो है कि हर रोज अमृत वेले उठ करके उस संकल्प को हम रिवाइज करें। जो दृढ़ संकल्प हमने लिया है मधुबन में आकर के, वो दृढ़ संकल्प को हर रोज अमृत वेले रिवाइज करें, यानी फिर उस संकल्प को याद करें कि मैंने ये संकल्प लिया है। हम ले लेते हैं, बाद में कभी उसको स्मृति में नहीं लाते हैं, इसलिए वो भूल जाते, विस्मृति होने से ही वो कमजोरी फिर जीवन में आ जाती है, क्योंकि उसके प्रति हमारा अटेंशन ही नहीं रहा। तो अगर हर रोज अमृत वेले उठ करके उस संकल्प को फिर से रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज करने के साथ ही बाबा के सामने स्वयं को देखते हुए, अमृत वेले जब बाबा से मधुर मिलन मनाते हैं, तो हम अपने दृढ़ता के संकल्प को फिर पक्का करें रिवाइज करते हुए, और फिर बाबा के सामने जैसे जाते हैं तो हर रोज सुबह में बाबा से विजय का तिलक अपने मस्तक पर लगवा ले कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा भी मुझे विजय का तिलक दे रहा है, और इस तरह अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बना ले तो दिन भर में भी वो संकल्प का अटेंशन हमें निरंतर रहेगा। और वो संकल्प निरंतर जब रहा तो दिन भर में अगर कोई बात आई भी तो भी तुरंत वो याद आ जाएगा, वो दृश्य याद आ जाएगा कि बाबा ने मुझे विजय का तिलक लगाया है, और इसलिए ये संकल्प को मुझे ढीला नहीं करना है। ये तो मेरे सामने परीक्षा आई है, और इस रूप में उसको देखेंगे तो एक उमंग आएगा और फिर उसको क्रॉस करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हर रोज रिवाइज करते हुए विजय का तिलक अपने मस्तक पर लगाया हुआ देख करके दिन भर में भी बीच बीच में अपने आप को अटेंशन दिलाते रहे तो वो संकल्प बहुत सहज रीति से हमारा संस्कार बनते हुए उसको पूर्ण कर सकेंगे। ये यथार्थ विधि है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर इस विधि को नहीं अपनाया तो ढीला होना ही है। तो रोज जैसे स्वयं के लिए वो दृढ़ता की बेल्ट को टाइट करना चाहिए। दिन भर में ढीला हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर सुबह सुबह उसको टाइट कर लिया तो सारा दिन उस अवस्था में हम रह सकते हैं। फिर वो संकल्प हमारा संस्कार बन जाएगा, और तब जाकर के वो संकल्प को पूरा करने की जैसे हिम्मत शक्ति स्वयं में अनुभव होने लगेगी और आसान लगेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हर कमजोरी के ऊपर विजयी सहज रीति से बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने पहली मुरली में हम बच्चों को ये विधि फिर से रिवाइज कराई कि बच्चे हर रोज संकल्प को रिवाइज करो, तब वो दृढ़ता बनी रहेगी। अगर रिवाइज ही नहीं करते हैं तो क्या फायदा, क्योंकि इतने जन्मों की मन की कमजोरी बनी हुई है उसको निकालना है। बहुत पुरानी बीमारी है, ये पुरानी बीमारी को हमें हटाना है तो उतना अटेंशन तो रखना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप में भी पुरानी बीमारी को निकालना है तो परहेज के ऊपर कितना अटेंशन रखना पड़ता है, दवाई टाइम टू टाइम लेने के लिए कितना अटेंशन रखना पड़ता है। अगर एक डोज भी दवा का मिस कर देते तो क्या होता है, और वो भी कम से कम 3 बार तो डोज लेना ही पड़ता है। दिन भर में कोई भी प्रकार की बीमारी हो, साधारण से साधारण बीमारी हो तो भी 3 डोज तो देते ही है, 3 डोज नहीं तो कम से कम 2 डोज तो देते ही है। तो इसी प्रकार हम भी कम से कम दिन में 3 बार तो अपने आप को डोज यानी याद दिलाएं, अटेंशन में ले आएं कि मुझे ये बीमारी को मिटाने के लिए जो मैंने दृढ़ संकल्प लिया है वो है, कहीं ढीला तो नहीं हो गया है। तो इस प्रकार कम से कम दिन में जितनी बार हमारा ट्रैफिक कंट्रोल चलता है उतनी बार ही अगर हम उस संकल्प को रिवाइज कर लेते या अटेंशन में खाली ले आए, रिवाइज सिर्फ अमृत वेले करे, दिन के समय हम सिर्फ अटेंशन में ले आए तो भी कुछ समय तक तो वो चलता ही है, उसका इफेक्ट चलता है। जैसे दवाइयों का इफेक्ट भाई इतना घंटा तो रहता ही है, एक पेन किलर ले लो तो भी उसका इफेक्ट 4 घंटा 5 घंटा तो रहता ही है। ठीक इसी प्रकार ये ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी अगर अटेंशन में वो संकल्प को वापस ले आए तो उसका इफेक्ट भी कुछ घंटा तो रहेगा कि नहीं रहेगा। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे वो कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। और तरीका ये है कि जो कमजोरी को हम मिटाना चाहते हैं, जिसके लिए हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, उसके विपरीत में कोई ना कोई विशेषता हमारे जीवन में जरूर होगी। उस विशेषता को याद करें और उस विशेषता को बाहर ले आए, उसको इमर्ज करने लगे। खाली इमर्ज संकल्पों में नहीं करना है, लेकिन वो विशेषता का प्रयोग प्रैक्टिकल कर्म में लाने लगे। जितना उसमें बिजी हो जाएंगे, बिजी रहने से वो कमजोरी को प्रयोग में आने का मार्जिन नहीं मिलेगा। खाली मन शैतान का घर होता है। मन खाली है तो फिर वो कमजोरी सामने बार बार आती रहती है और कोई ना कोई परिस्थिति के रूप में, पेपर के रूप में सामने आ जाती है और हमारे संकल्प को ढीला कर देती है। लेकिन उसके विपरीत में जो विशेषता है, उस विशेषता को डेवलप करने में, उसका प्रयोग करने में जितना हम बिजी रहेंगे, तो बिजी देख करके माया भी चली जाएगी, वो आएगी नहीं। और इस रीति से भी हमारा संकल्प ढीला नहीं होगा, मजबूत रहेंगे हम उसमें। तो हर एक आत्मा की कमजोरी के अनुसार बाबा से उसको कोई न कोई विशेषता का वरदान मिला हुआ ही है। सिर्फ उस विशेषता को अगर पहचाना नहीं है तो उसको हम विकसित नहीं कर पाते, उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं और उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और जब यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर बार बार वो कमजोरी उस स्थान को भरने की कोशिश करती रहती है। लेकिन विशेषता को ले आओ तो धीरे धीरे वो जगह जो कमजोरी ने ली हुई है, वो जगह पर विशेषता भर जाएंगी। तो इस रीते से हमारी कमजोरी को भी हम अपने शक्ति के रूप में उसको डेवलप कर सकेंगे और वो विशेषता को डेवलप करते हुए उसको संपूर्ण, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तब कहा, कारण क्यों है? किस प्रकार से? तो वही, किसी को गुस्सा आता है, ये कमजोरी है। गुस्सा आता है तो उसके विपरीत में शांति, तो बाबा से खजाना हमें मिला है ना। शांति की शक्ति को विकसित करो, अंतर्मुक्ता की स्थिति को डेवलप करो। जितनी अंतर्मुक्ता की स्थिति को डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे उस गुस्से के ऊपर विजयी हो सकेंगे। तो जो कमजोरी है उसके विपरीत में हमें कुछ न कुछ मिला हुआ है, कोई न कोई विशेष बात को डेवलप करने के लिए बाबा ने इशारा दिया हुआ है। अगर उन बातों में बुद्धि को बिजी कर दो और उसमें अगर पुरुषार्थ में लग जाए, अपने नेचर के हिसाब से देखो और उसमें अगर लग जाओ, तो वो कमजोरी को प्रयोग होने का मार्जिन ही नहीं मिलेगा और इस रीति से हम उसके ऊपर विजयी हो सकते हैं। कमजोरी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि हमने वो विशेषता को विकसित नहीं किया है, वो डेवलप नहीं किया है और इसीलिए वो कमजोरी बार बार आ जाती है, बार बार आ जाती है, बार बार आती है। वो अपना स्थान लेना चाहती, क्योंकि खाली स्थान तो हुआ है। अगर आप भरेंगे नहीं कुछ भी तो वही चीज वापस आ जाएगी, है ना। खाली मटका है, हवा निकालनी है तो पानी भरो तो हवा बाहर, लेकिन आप भरते कुछ नहीं है तो हवा तो रहेगी ही रहेगी ना, वो स्थान थोड़ी खाली करेगी। इस तरह कमजोरी ऐसे थोड़ी चली जाएंगी, उसके बदले में कुछ न कुछ भरना पड़ेगा। अगर भरेंगे नहीं, मैंने दृढ़ संकल्प कर दिया, अटेंशन रख लिया, उद्देश्य को समझ लिया, प्राप्ति को समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन उसको कुछ पॉजिटिविटी से भरा नहीं, तो पॉजिटिव एनर्जी को भरी नहीं तो नेगेटिव एनर्जी फिर आ जाएगी। इसलिए वो कमजोरी बार बार हमारे अंदर आ जाती है। तब बाबा हम बच्चों को बार बार ये बात कहते रहते हैं कि बच्चे दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता की शक्ति से विजयी प्राप्त करो। दृढ़ता की शक्ति से ही सफलता मूर्त बन जाएंगे और अपने संकल्पों में वो शक्ति है। सिर्फ दृढ़ रहने की आवश्यकता है और उसको पार करने की आवश्यकता है। तो ये है दृढ़ता की शक्ति को अपने अंदर विकसित करने की विधि, कि जब इस रूप में हम अपने आप में दृढ़ रहेंगे तो फिर धीरे धीरे हम अपने कमजोरियों के ऊपर सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। और हर कार्य वन बाय वन करें। हाँ, कमजोरियां हर एक में बहुत है अभी भी, लेकिन एक साथ में उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए वन बाय वन ले, जो सहज है उसको पहला ले और उसको विजयी बनते बनते फिर एक एक करके निकालते जाएं, तो जरूर है कि हो जाएगा। तो ये यथार्थ विधि है जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाई पहली मुरली में भी, और पिछले साल भी बाबा ने बार बार हम बच्चों को ये इशारा दिया, बच्चे दृढ़ संकल्पधारी बनो। और दृढ़ता में कभी भी ये नहीं डाउट आता कि पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं। पता नहीं आया माना हमें अपने संकल्पों में निश्चय नहीं है। इसलिए दृढ़ता के साथ निश्चय बुद्धि होकर के करेंगे, माना होना ही है, हुआ ही पड़ा है, अनेक बार किया है और करके ही रहेंगे। इस प्रकार की दृढ़ता अगर आ जाए, पता नहीं होगा या नहीं होगा, इनसे नहीं हुआ तो हमसे क्या होगा, ये तो इतने पुराने हैं, इनसे नहीं हुआ तो हमसे क्या होगा, ये है कमजोरी के संकल्प। तो संकल्पों में निश्चयात्मक बुद्धि होकर के वो दृढ़ संकल्प करो, तब वो निश्चित विजयी अनुभव कराएगी। तो दृढ़ता में भी निश्चय, दृढ़ संकल्प में भी निश्चय हो कि करेंगे ही हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हुआ ही पड़ा है, अनेक बार हमने किया है, डाउट की इतनी भी एक रेखा तक की भी मार्जिन न हो कि पता नहीं सोचा माना ही पत्ता कट जाएगा, है ना। वो संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, वो पत्ता कट जाता है। तो इसीलिए पता नहीं का संकल्प आना ही नहीं चाहिए, हुआ ही पड़ा है, ये है निश्चयात्मक संकल्प। और जब इस विधि से चलेंगे तो अवश्य ही हम उसको पूरा कर सकेंगे। तो ये है दृढ़ता को लाने की अपने संकल्पों में यथार्थ विधि। ओम शांति।
मुझको